पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को सतर्क करते हैं। आप ही वो संत बनते हैं, आप ही भक्त की भूमिका करते हैं, आप ही एक दास बनते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका वो करते हैं। अब यहां परमात्मा कहते हैं आजा बंदे सन राम की। अब यहां अपने आप को एक दास की भूमिका करते हुए, एक संत की भूमिका करते हुए अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी और अपनी ही शरण में आने की प्रेरणा कर रहे हैं और यदि वे स्वयं को परमात्मा भी कहते हैं परंतु वे बार बार यदि अपने आप को भगवान कहें तो हम नहीं स्वीकार करते उनकी एक भी वाणी को, क्योंकि हमने परमात्मा के विषय में बहुत ही उलट सुलट ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। हमने परमात्मा को निराकार मान रखे हैं। भले ही हम भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान शिव के भी पुजारी रहे हैं, फिर भी कोई जब प्रसंग आता था कि भगवान कैसा है तो कहते थे भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और जबकि हम उन भगवानों की मूर्ति साकार बनाकर पूज रहे होते हैं, उनके हाथ भी पैर भी सब कुछ लगे हुए होते। इसलिए परमात्मा ने इस अज्ञान को हटाने के लिए ना जाने कितने प्रकार की लीलाएं करनी पड़ी। उसी आधार से परमात्मा अपने ही शरण में आने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं कि आजा बंदे सन राम की, फिर पीछे पछतावेगा। कैसे पछताएगा? परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। ओए होए, रसब कहते हैं गधे को, अच्छे मजबूत गधे को जिसको खच्चर बोलते हैं। कहते हैं फिर मिट्टी लदे कुमार के घास नाना डाले कोई। राजा भी, राजा क्यों लिया परमात्मा ने? क्योंकि जब राजा ही पशु बनेगा, जो भक्ति नहीं करता अन्याय करता है, वो भी गधा बनेगा तो अन्य प्राणी की क्या औकात है कि वो ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा? जो भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा की साधना करते हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए प्रेरणाएं दी जा रही। फिर कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये नारी कुतिया हो, और गली गली भौंकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। परमात्मा कितना स्पष्ट ज्ञान बता रहे हैं और सामने आने वाला भयंकर कष्ट हमें याद दिला रहे हैं, हम फिर भी गफलत करते हैं। ऐसे ही बहुत से भगतजन मिलते हैं, क्योंकि ये सिरफरा ज्ञान हमें ग्रहण किया हुआ है हमने। इस आधार पर कहते हैं कि कोई कुत्ता नहीं बनता, कोई गधा नहीं बनता, कहीं नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। ये तो डराने के लिए कही है भगवान ने, संतों ने ये वाणी, भयानक वाणियां केवल भयभीत करने के लिए कही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बीड़ी शराब तमाखू आदि पीने से कोई ऐसे होता है वैसे होता है। पुण्यात्मा, जैसे चोर को कहा जाता है कि भाई चोरी मत कर, चोरी मत किया कर बच्चा, तेरी पिटाई होगी, काला मुंह करेंगे, नगरी में घुमाएंगे, फिर जेल में डाला जाएगा, तुझे सजा होगी। अब इसमें सच्चाई भी है, और कोई नहीं कहे कि चोर चोरी करता है उसको सजा नहीं होती, कोई नहीं उसके पिटाई नहीं करता, काला मुंह नहीं करते, ये तो केवल डराने के लिए कहा है। तो दोनों बात है, इसमें डर भी है और सच्चाई भी है। अगर वो डरेगा सच्चाई से कि सचमुच ये होगा, वो डर गया तो बुराइयों से बच जाएगा और उन आने वाली आपदाओं से भी बच जाएगा जो उसको बताई जा रही है। और यदि वो काना पे टाल गया कि ये तो वैसे कह रखी हैं, तो फिर उसको वो सभी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा जो उसको पूर्व में बताई जाती थी। ऐसी परमात्मा वर्तमान में जो बता रहे हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनके लिए क्या क्या कष्ट आएगा, बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारे। वो बीबी, वो बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां, राजाओं की रानियां पर्दों में रहा करती थी, या तो स्वयं ही बुर्का पहनती थी पूर्ण रूप से, या उनके आगे मकानों के सामने पर्दे लगे होते थे और आगे चौकी लगा करती थी, डोढ़ी लगती थी, वहां पहरेदार रहा करते थे, कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। अर्थात वो घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो पुण्यात्माएं जो रानी बनी, बड़ी अधिकारी बनी, अधिकारियों की पत्नी बनी, वो सब पिछले जन्म के पुण्यों से ही उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त हुई। ये तो उनकी पिछली बैटरी चार्ज है, वो तो चलेगी जितनी वो चार्ज्ड है। यदि आगे चार्जर नहीं लगाया, अर्थात आगे भक्ति नहीं की, तो पिछली बैटरी तो डिस्चार्ज होगी और फिर कुछ भी पल्ला नहीं रहेगा। परमात्मा ये सब दुख याद करा करके यही कहता है कि फिर चार्जर ला लो, अर्थात पुनः भक्ति फिर स्टार्ट करो, पुण्य करो, पूर्ण संत की शरण ग्रहण करो, अन्यथा क्या होगा। वो अनजान आत्माएं सत्संग के अभाव से, उनको उन्होंने यही मान रखा था कि हमारी ऐसे ही मौज बनी रहेगी, हम रानी बनी रहेंगी, हम ऐसे ऐसे उच्च घरानों की पत्नियां बनी रहेंगी। नहीं, जो दिन आज सुकाल नहीं रे आगे फिर धर्मराय। तो वो पुण्यात्माएं जो सत्संग से वंचित रही, उन्होंने अपनी ही थ्योरी से, अपने सिद्धांत से ये सोच रखा था कि हम तो ऐसे ही मौज रहेगी और आगे फिर हम रानी बन जाएंगी या मानव जीवन प्राप्त कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब उनके बारे में बताया जाता है कि वो सत्संग में ना आने के कारण क्या दुर्गति होती है उस पुण्यात्मा की। बिब्बी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती है वह बने कुतिया बाजार। पुण्यात्माओं, कलेजा ऐसे करने लग जाता जब ये हमारा नशा उतर जाता है, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, हम बच्चे ना रह करके, यानी हमारा माइंड जो है मैच्योर हो जाता भक्ति मार्ग में, तत्व ज्ञान में, फिर धड़क धड़क करता ये दिल ऐसे, और जब तक शराब पी रखी है जिसका नशा है अर्थात माया की जिसके ये चढ़ी हुई है परत, उसका अभी वो नशा उतरा नहीं है, वो तो सुन लेते हैं और फिर वही कुमत करते ही रहते हैं, वही कुभद करते रहते हैं। और जिनका नशा उतर गया, जिनको सच्चाई सामने आ गई कि भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती, जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, सत्य है, तो जब परमात्मा का विधान है और हम उसको तोड़ते हैं तो फिर दुर्गति तो होगी ही होगी, नो डाउट। इसलिए याद दिलाते हैं हमने ये बात, विचार करके देखो कहां तो राजा की रानियां और उच्च अधिकारियों की पत्नियां काजू के हलवे खाया करती थी, काजू डाल डाल कर मनुखा दाख डाल कर और झूठे छोड़ देती थी, खाया इतना खाया बाकी थाली सरका दी, उसको दासी बांधी और उनके पुत्र खाया करते थे। एक परमात्मा के नाम बिना फिर वो क्या बनती है, अगले जन्म में कुतिया बनती है, और एक ग्रास टूक के लिए सारा दिन अतिथि जो खाना खा रहा उस खाना खाने वाले के मुंह की तरफ देखती रहती है, ऐसी कब वो टूक डाला है, और कोई डाल भी दे टूक तो ऐसे फेंक देते हैं कुत्ते को जिसमें 10 ग्राम था, रेत गेल खाना पड़ता उस कुतिया को जो पहले रानी बनी हुई थी परमात्मा ना भजने से। और फिर एक कुत्ते के जीवन पर विचार करके देखो, परमात्मा कहते हैं भाई मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 माहे, सतगुर सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मात पिता तो आगे जीवन में सब जगह मिलेंगे, हम कुत्ते के जन्म होगा वहां माता पिता होंगे, हम पशु और पक्षी बनेंगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, यही ममता होगी, इसी तरह का सारा जुगाड़ होगा। आपने देखा होगा अब कोई कुतिया कुत्ता है, ऐसी सर्दी में जबकि हम दिसंबर और जनवरी में ऊपर से वर्षा की फुहार भी और शीत लहर चल पड़ती है, वो बाहर बैठी होती है, गली में पड़ी होती है, साथ में उनके वो संतान होती है, सारी रात ठिठुरते हैं, सारी रात भौंकते हैं और भौंक भौंक कर उनके पेट खाली हो लेता सवेरे तक, फिर वो रोटी के लिए आहार के लिए किसी का दरवाजा खुला दावसा लगाकर उसके अंदर घुस जाते हैं, और कहां जाते हैं, रसोई की तरफ चलते हैं जहां से उनको खाने की महक आ रही होती है। अब उसको कौन जाने देगा रसोई तक, दूर से मार मार शुरू हो जाती है, मार मार करते करते कोई उसका मार दे लठ, 10 आध घंटे थी ट्या 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 गली में खड़ा होकर करेगी, और फिर वो दर्द और तो है ही, लेकिन उसको भूल करके फिर पेट की वो आग सतावे, फिर दूसरे के घर में कोशिश करता है वो प्राणी कुत्ता या कुतिया, वहां उसके भाग उसने टूक में लगे तो कोई लठ मिला, यदि वहां भी लठ का सूत बैठ गया उसका डंडा लग गया अच्छा जबरदस्त, फिर वो बाहर बाहर चलता गांव से, क्या खाता है वहां पर, वहां पर देसी भाषा में क्या करें, गू खावे, फिर वहां जाके वहां वो जो परमात्मा ना भजने से अब उसने के आहार करना पड़ रहा है। पुण्यात्माओं अब हमने जरा सी बात लगे है, भगवान ने ये कति निचोड़ कर कद रखा है, इन वचनों को सुनकर नींद आनी बंद हो जानी चाहिए इंसानों, तो अपनी भक्ति करे, भगवान से डर करे, बुरे कामों से बचे, बुराई नहीं करे जब अपने कल्याण करवाए। बीबी पड़दे रहे थी भाई डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजारे, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। पहले तो एड्डी से लेकर चोटी तक बढ़िया वस्त्र पहन करके वो अपने आप को ढके रहती थी और कहती थी हम सत्संग में नहीं जाया करते, हम तो उच्च घरानों की बहन बहू बेटियां हैं। और फिर क्या बनता है, वो नी वस्त्र होकर के कुत्ते की कुतिया की जुन्नी पा करके और जंगल वहां सरायों में घूम रही, शोर कर रही है। सराय धर्मशालाओं के पास जाती हैं शहर के कुत्ते, क्योंकि वहां अतिथि रुका करते थे, वहां रोटी खाते थे, उनको भी छोटा मोटा टूक डाल देते थे। नक बेसर नक पैबणी व पैरे थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी वै सुनो साहेब के खेल। ऐसे ऐसे दुख हमने असंख्यों बार भोग रखे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा कि कोटि जन्म तो भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खर बोरे कौवा हंस बगारे। कुकर कुत्ते को कहते हैं, सुकर सुअर को कहते हैं और खर गधे को कहते हैं। इस काल ने हमारे साथ यही एक धोखा किया हुआ है कि जब हम मानव शरीर में होते हैं अपना ही पुण्य होता है और हमें वो आहार दिया जाता है, सुविधाएं दे दी जाती हैं, जो जिसका जैसा पिछले जन्म में मलाई उसने इकट्ठी कर रखी थी, अपनी ही मलाई को खा रहा है। इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि वो कति किसी को समझता नहीं। एक सिंपल सा आदमी इतनी आकड़ पाड़ गया है, फिर बाकी कोई मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो तो कहना है कि ये सब कुछ जो भी बने हैं, जिनको कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है, जिनको धन प्राप्त है, वो पूर्व जन्म की कमाई है उन्हीं की, और वो अपनी ने खाओ और खंडाओ, कुछ करो, नो ऑब्जेक्शन। ये तो परमात्मा आते हैं, पूर्ण परमात्मा की रजा होती है, या अपने कोई दास को भेजते हैं आपको सुचारू रहने के लिए, ज्ञान देते हैं कि ये जो आप जो क्रियाएं कर्म कर रहे हो, केवल इतना ही काम तुम्हारा नहीं है, इसके साथ साथ और भी बहुत जरूरी कार्य है जिसको तुम नहीं कर रहे। परमात्मा ने यह नहीं कहा कि आप अपना कर्म ना करो, कर्म करो, लेकिन उस कर्म में एक कर्म और है जो भक्ति कर्म है। उस भक्ति कर्म को छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हो वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वो केवल इसी संसार में रहने के लिए रोजी और रोटी का ही प्रयत्न है, और रोजी और रोटी के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की कमाई जो और करनी होती है वो ना करना वो अपराध है। उसी को याद दिलाने के लिए परमात्मा स्वयं भी आए हैं, हमारे जैसे दासों की भी ड्यूटी ला करके अपनी प्यारी आत्माओं को सजग करते हैं। पुण्यात्मा होती हैं वो समझ जाती हैं, शीघ्र ही परमात्मा के चरणों में आ जाती हैं, अपना कल्याण करा लेते हैं, और जो जड़मती होते हैं वो थोड़ा सा और धक्के खा के और कुछ ज्यादा चोट खा के अपनी दुर्गति करा के फिर परमात्मा के चरणों में आएंगे। आना पड़ेगा, इस जन्म में करो, चाहे फिर कभी परमात्मा रजा बख्शा, ये अमृत ज्ञान कहीं मिले, कोई संत हो, पता नहीं कौन से युग में दाव लगेगा। अब ये दाव लगे आपका, ये कोई बालकों का खेल मत समझना, पूरे विश्व के विपरीत ज्ञान है ये। पूरा विश्व अपने हिसाब से शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ है, उसके बिल्कुल विपरीत, क्योंकि तत्व ज्ञान उससे विपरीत है और सत्य है, यथार्थ है। हम उस मार्ग पर चले हैं जिसका सभी जिसको सभी रिजेक्ट किए बैठे हैं कि नहीं, ये मार्ग ठीक नहीं, ये भक्ति ठीक नहीं, हम जो कर रहे हैं ये ठीक। तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये शरण मिली है प्रभु की। और जो भी सत्संग सुन रहे हैं या सुनेंगे वो भी सजग हो जाएंगे। उनके लिए परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कष्ट आप पर आएंगे। किन पर आएंगे? जो परमात्मा नहीं भजते। परमात्मा की शरण में आए कैसे? भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बिना कोई भी साधना हम करते हैं व्यर्थ है। और गुरु कौन होता है? गुरु की परिभाषा बहुत ही जटिल बना दी गई है इन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों, संतों, गुरुओं और नकली झूठ ये अज्ञानी गुरुओं ने, क्योंकि वो गुरु पद को जरूर गुरु पद की फीत लगाए हुए थे लेकिन वो गुरु नहीं थे। क्या हम उनको गुरु कह सकते हैं जो अभी तक हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा पर आरोड किए हुए थे? जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15, 20 से 23 में स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ हो रहा है वो गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्म कह रहा है कि वो मुझसे ही हो रहा है। ऐसा जान, उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति यानी हमें प्रेरणा करता है, हमारे अंदर संतान उत्पत्ति का की जो प्रेरणा करता है ये रजोगुण होता है। फिर यहां के संसारिक सुख को इकट्ठा करने की जो प्रेरणा होती है ये भी रजोगुण होता है। और सतोगुण के आधार से हम एक दूसरे के साथ मोह ममता में लगे हैं, जैसे बेटा और बेटी की, संतान और संपत्ति की, भाई बहन का जो आपस में हमारा मोह है यह सतोगुण है के प्रभाव से, जो विष्णु जी के कारण है। और संहार श्री तमोगुण, शंकर भगवान तमोगुण से हो रहा है। तो ये तीनों ही रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी और तमगुण शंकर से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त मैं हूं। कौन? गीता ज्ञानदाता यानी काल। ये काल ब्रह्म कह रहा है। कारण क्या है कि काल ब्रह्म को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा है, इसको एक कोड लगा है, इसको एक रोग लगा है। इसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये ड्यूटी दे रखी है। इनको एक एक गुण युक्त कर दिया, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात, क्योंकि उसने उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। अपने आप उनके अंदर से वो उनके रेज निकल रही है, उसका गुण अपने आप उनके अंदर से पूरे विश्व को प्रभावित करा। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि मुंह जले और छोंक लावा जब वो छीकम छीक करेगी, ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीनों गुणों से जो हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि ये सब संतान उत्पत्ति, फिर या सती थी या सहार आदि उस काल के लिए ही किया जा रहा है। आपको गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 पढ़कर सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको हम शिरोधार्य मानते रहे और कहते रहे कि गीता जैसा ज्ञान नहीं, लेकिन वो अज्ञानी हमारे को इसके विपरीत मार्ग, भक्ति का मार्ग देते रहे, तो वो गुरु नहीं, उनको हम गुरु नहीं कह सकते। वो तो शत्रु थे समाज के, जैसे एक टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा है, वो टीचर नहीं है, वो तो उन विद्यार्थियों का शत्रु है, उसने जीवन बर्बाद कर दिया उनका। ये है श्रीमद् भगवत गीता, इसके बारे में सातवें अध्याय के श्लोक 12 से 15 आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिनमें स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, यानी चार उपमा दी है भगवान गीता ज्ञान दाता ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं उससे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। ये दास नहीं कह रहा, ये गीता जी बोल रही है, अपने पवित्र सदग्रंथ बोल रहा है। ये देखिएगा, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री जयदयाल गोविंद का, और ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करते हैं। ये श्लोक नंबर 12 है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। 13वें में कहा है, गुणों के कार्य रूप, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो यहां कितना क्लियर बात है कि गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि तीनों गुणों से ऊपर मुझे नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, वो कह रहा है कि तीनों गुण से आगे जो पूजा है वो मेरी है, ये मेरी पूजा भी नहीं करते। इसलिए पूजा है तो तीनों गुण भी कोई और उपासित कोई देव है, ना कि ओनली गुण, ये प्रमाणित करेंगे आपको। तो अब देखिए 14वें श्लोक में, 7वें अध्याय का ही श्लोक नंबर 14, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, जो पुरुष मुझको केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। अब यहां स्पष्ट हुआ कि जो मुझे पूजते हैं वो इस तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उनसे उनको लांग जाते हैं। इसे सिद्ध है कि तीनों गुण भी कोई पूजा ही है। यहां देखो 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है 7वें अध्याय के में कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दुष्कर्म करने वाले मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले दूषित कर्म करने वाले मूड अर्थात मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। फिर देखिएगा, इस त्रिगुणमयी माया अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से प्राप्त लाभ से आगे उनकी बुद्धि नहीं जाती, इन्हीं को फाइनल मान चुके हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, हमारी पवित्र सदग्रंथ गीता जी कह रही है कि भाई इसमें ज्ञान है कि उन तीनों भगवानों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसके विपरीत ये हमारे को वो गुरु लोग जिनको हम संत मानते थे, सतगुरु मानते थे, वो नकली, वो हमें इन्हीं की पूजा तक सीमित रखे हुए थे। अब देखिएगा रजगुण क्या है, सतगुण क्या है, तमगुण क्या है। ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये प्रमाणित करना है। फिर ये यहीं का ये कार्य स्पष्ट हो जाता है। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, इसके कौन है प्रकाशक? अथ देवी भागवतम भाषा टीक सभास टीकम स महात्यम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके तीसरे सकंद को हम देखते हैं। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब यहां देखना इसके अध्याय नंबर पांच और प्रश्न नंबर ग्यारह और यहां देखिए। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ओह, युक्त किए हैं। फिर देखो ये सातवां श्लोक समाप्त होता, आठवां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया है। अब ये संस्कृत है, सातवां श्लोक समाप्त है, आठवां प्रारंभ है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों बनाया? सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को, ये विष्णु को हरि कहते हैं, तो विष्णु को किस लिए आपने, विष्णु को किस लिए आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी हैं। तो यहां स्पष्ट हुआ कि जो आज तक हमें ये ज्ञान बताते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, और यही सर्वेश्वर सर्वश्रेष्ठ रचनहार कुल के मालिक और उपास्य इष्ट हैं, तो वो गुरु नहीं थे, इसलिए वो नकली गुरुओं का बोलबाला अधिक था, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। सतगुरु वो होता है जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ ज्ञान दे। परमात्मा कहते हैं, गुरुओं गांव बिगाड़े संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े। गुरुओं गांव बिगाड़े संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े, तो वह गुरु नहीं थे। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो उसमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यो थोथा पुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कितना कमाल किया परमेश्वर ने, यथार्थ ज्ञान दिया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी और ये ऋषि महर्षि सारे अज्ञानी थे और वेद भी पढ़ते थे, इसका भी प्रमाण आपको देते हैं। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ बता रहे हैं जिनको हम सर्वोत्तम सदग्रंथ मानते थे। ये श्रीमद् भगवत देवी श्रीमद् देवी भागवत पुराण इसमें भगवान विष्णु जी के विषय में आपको दिखाते हैं वो कितने विद्वान थे जिनको हम भगवान मानकर पूज रहे थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर, अनुवाद करता है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके अध्याय नंबर स्कंद नंबर 1 और अध्याय नंबर 4 में पढ़कर देखिए। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वेदादि देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा और गदा लिए होते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु भी कहा उनको, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि श्री हरि उनसे कहने लगे, यानी विष्णु जी को हरि भी कहते, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव और मानव यह सभी जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से सभी कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों का को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है हो जाता है। मुझे इस प्रकार से मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। यानी ये हमारे भगवान के विचार हैं श्री विष्णु जी के, कि मैं तप करता रहता हूं और फिर तप करके बैटरी चार्ज करता हूं, सिद्धि प्राप्त करता हूं, फिर राक्षसों को मारता हूं। और मेरे विचार से इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। जय हो बंदी छोड़ की। ये है हमारे भगवान, ये विद्वान है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, ये आप देखो। पुण्यात्माओं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये मुनि, ये देवता, ये सभी इस काल के ही डोर से बंधे हुए हैं। इनके गले में काल का ही जाल फंसा हुआ है, ये इनसे बाहर नहीं है। जब हमारे भगवान, जिनको हम सबसे बढ़िया भगवान सतोगुण विष्णु जी मानते, ये इनका ज्ञान देख लो, मैं तप करता हूं। और गीता जी में लिखा है कि जो घोर तप को करते हैं वो राक्षस वृत्ति के लोग हैं, जो घोर तप को तपते हैं। अब जैसे वेदों को पढ़ने वालों ने वेदों को नहीं जाना, आप किसी भी संत की या पंथ की पुस्तक निकालकर देख लीजिए, कभी समय आने पर प्रसंग आएगा तो आपको सबके दिखाऊंगा एक कि ये पंथ वाले भी कहते हैं जो किया कर्म है वो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म को काटा नहीं जा सकता और वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा अपने सत साधक के घोर पाप को भी काट देता है। वेदों में प्रमाण साकार, परमात्मा साकार लिखा है, वो हमें निराकार बताते हैं। एक भक्त ने कहा कि मैंने टीवी पर सुना कि अब एक संत बता रहा था कि भगवान वेदों में साकार लिखा है, तो वो साकार क्या बताते हैं कि जो वो भी कहते हैं परमात्मा का निराकार और साकार दोनों रूप बताते हैं। कैसे कि ये जो भी जगत हमें नजर आ रहा है, दृष्टिगोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ये भगवान का साकार रूप है। और उसको कहते हैं वो वेदों में भी ऐसा ही लिखा है। परमात्मा कहते हैं वो नकल करना चाहेंगे हमारी तो नकल भी ना आवे, क्यों अकल बिना नकल होना। तो कहने का भाव ये है कि अब हम सभी शिक्षित हो गए हैं और अब समय आ गया है कि जितने भी संत पंथ अभी तक जो चरम सीमा पर जिनका तो तूती बोल रही है उनकी पुस्तकें अपने पास विद्यमान हैं, और जो आज नहीं 150-150 वर्ष से उनकी वही थ्योरी सबको जो है ना बांट दी गई है। अब परमात्मा का यथार्थ ज्ञान उनकी सारे की जड़ निकाल देगा। और पुण्यात्मा जो मूड है उनका तो जिक्र नहीं, वो तो किसी योग्य ही नहीं होते। और जो बुद्धिमान हैं, जिनको परमात्मा चाहिए, तत्व ज्ञान को तुरंत देख करके छोड़ देंगे उस नकली पंथ को, अपना कल्याण कराएंगे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे कति। ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, ब्रह्मा से विष्णु जी ने ज्ञान सुना, शिव जी ने ज्ञान सुना। अब क्या है, जैसे ये तप क्यों तपते हैं, जबकि तप तो किसी भी सदग्रंथ में नहीं, ना वेदों में तप करने का संदेश है, ना का आदेश है, बल्कि मना किया है गीता जी में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना जो घोर तप को तपते हैं वो नराधम, वो मनुष्यों में नीच हैं, और उन वो मुझे भी और शरीर के अंदर जो सभी वो पूर्ण परमात्मा है उसको भी वो कर्ष करने वाले हैं। अब ये तप करने का कहां से प्रचलन चला, ये कहां से प्रचलित हुआ, काल ने वेद बाद में दिए, और पहले ब्रह्मा को कह दिया तप कर तप कर तपो तप तप कर तप कर, तो उसने तप शुरू किया। 1000 वर्ष तक तप किया, वो बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई। उसी की सिद्धि से उसको आगे कार्य सौंप दिया। जैसे आपने शिव महापुराण में पढ़ा था, फिर भी दिखाएंगे समय आने पर, उसमें ये काल भगवान कहता है इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि तुमने जो एक एक कार्य प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का, विष्णु ने सतीथि का, और रुद्र शिव को संहार करने का, ये तुमने अपने तप के कारण प्राप्त किया है। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। अब ब्रह्मा जी ने उस काल की इस आकाशवाणी को के तप कर तप कर, ये भगवान की वाणी मान ली। वेदों से ओम नाम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम के जाप का, जाप को काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ करो, अपना परम कर्तव्य जान करके ओम नाम का जाप करो। ये तो अपना अपनी पूजा बताई है इस गीता ज्ञान और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ने। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है और जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त करता है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए, उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से उनसे याचना करो तत्व ज्ञान प्राप्ति की, तब वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता के पाने की परमात्म तत्व का ज्ञान सुनाएंगे। सत्रहवें अध्याय के गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ओम तत् सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् ये सांकेतिक है जो परब्रह्म का है, और सत भी सांकेतिक है, वो ये दास बताएगा जो सार शब्द है वो पूर्ण परमात्मा का है। उस परमात्मा के पाने के तो केवल एक तीन मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने बस फाइनल फैसला, और उसको कौन बताएगा, तत्वदर्शी संत बताएगा। वेदों और गीता में केवल ओम नाम का जाप है और वो ब्रह्म तक की साधना की विधि है। उस परमात्मा के पाने के लिए तत्वदर्शी संतों के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को साकार कहता है जन्म लेने वाला, कोई बिना जन्म लेने वाला, कोई कुछ कहता है, इसका वास्तविक ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उन्हीं से सुनो। तो वो आपको पता चल गया होगा कि वो किसे संत थे, किसे गुरु थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही यानी यहाँ के सिरताज देख लिए। फिर अन्य ऋषि तो ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त है, उन्होंने ही पुराणों में अपना अपना ज्ञान लिखा है। तो वो वेद ज्ञान से वंचित थे। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब जब गुरु मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सदगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि नकली गुरु घने वो भी अपने आप को गुरु कहते हैं। वैसे जैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, ईस माने भी मालिक होता है। ईश्वर परमेश्वर शब्द किस लिए लगाए गए, क्योंकि ये नीचे के भी ईस मालिक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में ये भी मालिक हैं, स्वामी हैं, ईश हैं। इनसे ऊपर जो है वो ईश्वर है। जैसे ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ईश स्वामी ब्रह्म है, और ब्रह्म से ऊपर एक सात संग ब्रह्मांड का मालिक है जिसको ब्रह्म परब्रह्म कहते हैं, और इससे ऊपर एक पूर्ण परमात्मा है जो सभी इन सभी ईश्वरों के ऊपर, सभी भगवानों के ऊपर, ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है, उसको परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर शब्द में तीन भगवानों की का विशेषण है, तीन भगवानों की जानकारी है। ईश माने परमात्मा, प्रभु स्वामी, ईश्वर। ईश्वर इसलिए शब्द लगाया कि उससे भी कोई श्रेष्ठ और प्रभु है, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम, ईश्वर उससे भी परम है यानी श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर है। ब्रह्म परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीन परमात्मा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि संसार में छर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, और इन दोनों के लोकों में जीवात्मा तो नाशवान है, लेकिन इनके अपने भी और इनके प्राणियों के भी, सभी के जीव सथुर शरीर नाशवान है, ये अविनाशी नहीं। भले इनकी आयु लंबी लंबी है लेकिन मृत्यु होती है। इसलिए गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव में परमात्मा जो इन दोनों से भी न्यारा है वो उत्तम परमात्मा है, वह श्रेष्ठ भगवान है, वास्तव में वो है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और वही तीन लोकों में प्रवेश करके ये लोकतर विभर्ति अविश्य विभर्ति, अविश्य माने प्रवेश करके, और अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो इन दोनों ब्रह्म और परब्रह्म से वास्तव में उत्तम जो श्रेष्ठ भगवान है वही वास्तव में अविनाशी है, वो इनसे भिन्न है। तो इसी प्रकार गुरु शब्द सतगुरु क्यों कहा, कि ये गुरु, वैसे तो जैसे कोई अक्षर ज्ञान कराता है वो भी गुरु है, कोई मैकेनिक का काम सिखाता वो भी गुरु है, कोई चिनाई का काम सिखाता वो भी गुरु है। इसलिए हमने गुरु, आध्यात्मिक गुरु को और सद्गुरु, अब जैसे यहां नकली गुरु है, कोई राम की, श्री कृष्ण की पूजा तक सीमित किए बैठा है, कोई विष्णु जी की, कोई जो है ना शिव जी की पूजा पर, कोई भैरव की पूजा पर, कोई और देवताओं की पूजा पर, कोई श्याम जी की पूजा पर, कोई हनुमान तक की पूजा पर, इन्हीं तक का ज्ञान देते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। इसलिए सदगुरु कहा गया है कि इन गुरुओं से अलग, लेकिन ये गुरु की पदवी प्राप्त किए बैठे हैं अनजान आत्माओं में, इसलिए सदगुरु शब्द का प्रयोग प्रभु ने करना पड़ा अपनी महिमा आप ही बताने के लिए। तो गुरु कहो, वैसे तो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि गुरु वही है जो पूर्ण ज्ञान से मास्टर है अपने अपने विषय में, वही गुरु के कहलाने के योग्य होता है। ये यहां क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब देखो सतगुरु ने, सच्चे गुरु ने इस प्राणी का कितना कष्ट काट दिया। ओए होए होए, जैसे कितना बाईपास निकाल दिया। कहते हैं जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, क्योंकि नरक में डालते हैं जैसे पशुओं ने ठोके अगर फाटक में लठ मार मार के, वो वापस भागे उनको फिर अंदर पीठ छेद कर डालते हैं। ऐसे जब नरक के पास जाते हैं ये प्राणी वापस दौड़ता है स्पीड तर, वो मोगरे मारे यम के दूत कूट छेद कर उसको नरक के अंदर ठोक देते हैं। कहते हैं उन पर भी पिटता और नरक भोगता, फिर बाहर आकर के 84 लाख योनियों के प्राणियों की शरीरों में फिर कष्ट उठाता। वो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार, यानी सतगुरु के कृपा से उपकार से वो सब झंझट मिट गया। सतगुरु बिना नहीं मिट सकता, इन नकली गुरुओं से उपदेश लेकर के ये कष्ट आपका निवारण कभी नहीं हो सकता। आप 84 लाख योनियां भी भोगोगे, सब कष्ट उठाओगे। इसलिए हमने सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। फिर ये कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा। आप राम और कृष्ण को, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म राम और कृष्ण को सुप्रीम पावर मानकर पूजा करते हैं, तो परमात्मा उन्हीं का उदाहरण देकर समझाते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे। तो आप ने बगैर गुरु के कोई साधना करते हो तो आप अपने आप विचार कर लेना कि आप कितने ठीक हो या गलत हो। राम, श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से गुरु को गुरु बनाया, और वशिष्ठ जी को आपको पता है ज्ञान कितना था। अब ये तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको खूब दिखाई देने लग गया है कि इन ऋषियों को केवल ब्रह्म तक का ज्ञान था, वो भी खिचड़ी। स्वयं भी तप करते थे, सिद्धियां प्राप्त करते थे, फिर एक दूसरे को श्राप दे देते थे। और वो ऐसे गुरु श्री राम ने किए